आशीष सिंघानिया मेंशन में तृप्ति के कॉल का इंतजार कर रही थी। वो बस जल्द से जल्द ये सुनना चाहती थी कि आकाश आशिका को लेकर हमेशा के लिए वहां से निकल गया है, ताकि वो अभिमान को हासिल कर सके। लेकिन तृप्ति ने उसे कोई कॉल नहीं किया, ऊपर से वो उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। तृप्ति के इस तरह बेपरवाह होने पर आशी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस बीच उसकी नज़र आशुतोष और काजल पर गई, जो काफी देर से घर से बाहर थे। काजल को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। आशी ने तृप्ति को कॉल करना छोड़ा और तुरंत काजल के पास नीचे आ गई थी। आशुतोष भी उसके साथ थे और आशी को देखते ही उन्होंने तुरंत काजल के लिए पानी लाने के लिए कहा, लेकिन अनजाने में उनके मुंह से आशी की जगह विहा नाम भी निकला था। अपना असली नाम आशुतोष के मुंह से सुनकर आशी के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो तुरंत आशुतोष की तरफ पलटी और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, डैड आपने अभी अभी मुझे क्या कहा? आशुतोष ने आशी की तरफ घूर कर देखा। वो उसे फटकारते हुए बोले, आर यू सीरियस आशी? तुम्हें देख नहीं रहा कि तुम्हारी मॉम ठीक नहीं है? और तुम्हें इस बात का पता करना है कि मैंने तुम्हें किस नाम से बुलाया था? अफकोर्स मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर ही बुलाऊंगा। अब जो कहा है वो करो, और तुम नहीं कर सकती तो किसी हाउस हेल्पर को बोल दो। आशुतोष के डांटने पर आशी का चेहरा उतर गया था। उसने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और तुरंत किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। वो उस तरफ जाते हुए मन ही मन बोली, नहीं मुझे अच्छे से याद है, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई थी और डैड ने मुझे वीहा कहकर ही बुलाया था। हो सकता है डैड मॉम को लेकर ज्यादा परेशान है, इस वजह से उनके मुंह से निकल गया होगा। आशी ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया और पानी का ग्लास लेकर काजल के पास पहुंच गई थी। आशी ने काजल को पानी दिया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तब उसे महसूस हुआ कि काजल को बहुत तेज बुखार था। डैड, मॉम का टेम्परेचर काफी हाई लग रहा है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। और आप लोग अब तक कहाँ थे? मॉम को अचानक क्या हुआ? आशी ने आशुतोष के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी। कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ा परेशान है, आशुतोष ने जवाब में इतना ही कहा। वो फिलहाल आशिका के बारे में आशी को कुछ नहीं बताना चाहते थे। आशी ने भी इस बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया, वो डॉक्टर को कॉल करने के लिए दूसरी तरफ चली गई थी। उसके वहां से दूर हटते ही काजल ने एक नज़र आशी की तरफ देखा और फिर आशुतोष को। वो धीमी और मायूस आवाज में बोली, आपको उसे सच बता देना चाहिए था, हमें उसे तैयार करना होगा। तुम जानती हो ना वो कितनी पजेसिव है, वो यज्ञ तक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, तो आशिका को कहाँ से कर लेगी? उसे यही लगेगा कि आशिका के आने के बाद हमारा प्यार कम हो जाएगा, आशुतोष ने दबी आवाज में कहा, ताकि गलती से भी आशी के कानों में उनकी बात ना पड़ जाए। लेकिन हम उसे समझाएंगे कि हम उससे प्यार करते हैं, आशिका के आने के बाद भी उसके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काजल बोली। हाँ, जैसे तुम समझाओगी और वो आसानी से समझ जाएगी। अभी आशिका हमारे पास नहीं है और ऐसी सिचुएशन में आशी को पता चला तो मुझे डर है कि वो फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। अभिमान के वक्त भी वो हेल्प लेने के लिए तृप्ति के पास चली गई थी और मुझे डर है कि तृप्ति हमारी आशी को यूज ना कर ले। वो बहुत इनोसेंट है, जब आशिका आ जाएगी तब उसे खुद पता चल जाएगा, आशुतोष ने काजल को समझाते हुए कहा और फिलहाल आशी के सामने चुप रहने का ही फैसला लिया। वे दोनों बात कर रहे थे तभी आशी वहां पहुंच गई थी। उसने आशुतोष की आखिरी लाइन सुन ली थी तो वो हल्के हैरानी भरे लहजे में बोली, मुझे क्या खुद पता चल जाएगा? क्या कुछ है जो आप दोनों मुझसे छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं है, आशुतोष ने झट से जवाब दिया और फिर बातचीत के रुख को बदलते हुए उन्होंने आशी से ही पूछ लिया, तुम डॉक्टर को कॉल करने के लिए गई थी ना, तुम्हारी बात हुई उनसे? हाँ, वो बस पहुंच ही रहे हैं, आशी ने जवाब में कहा। वो काजल के पास बैठ गई थी। आशी काजल के सिर को हल्का हल्का दबा रही थी। हालांकि बाकी मौकों पर आशी ऐसा करती थी तो काजल को बहुत खुशी होती थी और वो हमेशा आशिका को उसमें ढूंढा करती थी, लेकिन आज आशिका पास होना भी उसे सुकून नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने आशिका का चेहरा घूम रहा था। काजल ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ना मैं एक अच्छी माँ बन पाई और ना ही अच्छी इंसान। मैंने तुम्हें बहुत सुनाया था और तृप्ति की गलतियों का जिम्मेदार तुम्हें ठहरा दिया। प्लीज मुझसे नफरत मत करना आशिका, तुम्हारे जाने का दर्द और इतने सालों दूर रहने का दुख तो मैं भले ही बर्दाश्त कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी नफरत नहीं। सिर्फ काजल ही नहीं, आशुतोष के मन में भी आशिका के ही ख्याल चल रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, तुम्हें पहले से ही सच का अंदाजा हो गया था और तुमने कुछ नहीं कहा। क्या तुम डरती थी कि हम लोग तुम पर फिर से उंगली उठाएंगे? मैंने अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया और न जाने उसे क्या कुछ नहीं कह दिया। इतना सब कुछ होने के बाद तुमने कभी शिकायत क्यों नहीं की? बस चुपचाप हमारी बातें सुनती रहीं। उल्टा अभिमान तुम्हें डिफेंड करने के लिए आगे आ गया था, पर तुमने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। क्या तुम हमसे इतनी नाराज थी? अभिमन्यु ने बताया कि तुम हमसे मिलना तक नहीं चाहती थी। इन सब की वजह तृप्ति है, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया सिर्फ और सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए। वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो आशी को चुभ रही थी। उसने आशुतोष और काजल के चेहरे की तरफ बारी बारी से देखा, जिन पर दुख के गहरे भाव उभरे हुए थे।
आज आशी को अपने ही घर में काफी अजीब और अनजाना सा महसूस हो रहा था। इसका कारण उसे समझ नहीं आया, बस वो शांत थी। दूसरी तरफ जब आशी तृप्ति से बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तब तृप्ति का मोबाइल पृथ्वी के पास था। उसने पहले इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसने नोटिस किया कि वो कॉन्टैक्ट नंबर आशी के नाम से सेव था। पृथ्वी ने उसकी थोड़ी डिटेल निकाली तो उसे आशी की बाकी डिटेल भी पता चल गई थी। वो हैरत भरे लहजे में बोला, अजीब बात है, मिस्टर सिंघानिया की अडॉप्टेड चाइल्ड तृप्ति बजाज को क्यों कॉल कर रही है, वो भी उस वक्त में जब तृप्ति अंशिका को यहाँ से भगाने के प्लान में थी। पृथ्वी को ये किसी तरह से भी इत्तेफाक नहीं लगा था। उसने अभिमन्यु को इस बारे में बताना जरूरी समझा। वे लोग शाम को ही गोवा वापस आ चुके थे। पृथ्वी तृप्ति के पास उनकी एक फैक्ट्री के अंदर था। उसने तृप्ति से कुछ पूछने के बजाय अभिमन्यु से जानने का सोचा, जो इस वक्त ऑफिस से घर जा रहा था। वहीं राजवंश विला में इशिका रूही को खाना खिला रही थी। काफी देर हो गई थी, रूही सोई नहीं थी, ऊपर से उसे दोबारा भूख भी लग गई थी। डैड कब आएंगे मम्मा, क्या उन्हें नहीं पता कि रूही घर आई हुई है? नानू मुझे ज्यादा दिन तक रहने नहीं देंगे, उनका मेरे बिना मन नहीं लगता है, रूही ने अपनी मासूम आवाज में कहा। रूही का ज्यादातर समय केशव और राधिका के घर पर ही बीतता था और मुश्किल से केशव वीकेंड पर रूही को इशिका के पास भेजते थे। इशिका ने उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आपके डैड का वेट सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, आजकल उनका ज्यादातर टाइम गोवा से ज्यादा मुंबई में बीतता है। आज तो उन्होंने पूरे दिन से मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, तो क्या इस बार भी मुझे डैड से बिना मिले ही वापस नानू के घर जाना होगा? रूही मायूसी से बोली, बिल्कुल नहीं, मैं और अभिमन्यु बिजी थे इसीलिए तुम्हें माँ के पास छोड़ दिया। मैं तुम्हारे नानू से बात करूंगी और उन्हें बोलूंगी कि अब से रूही वापस हमारे साथ रहेगी। इशिका ने रूही को प्यार से समझाया तो वो खुश होकर उसके गले लग गई थी।
इशिका ने अभिमन्यु को कॉल करना चाहा, लेकिन ये सोचकर कि वो उसका कॉल रिसीव नहीं करेगा, इशिका ने अभिमन्यु के बजाय आशिका को कॉल किया। मुंबई जाने से पहले अभिमन्यु ने इशिका को यही बताया था कि वो आशिका से मिलने जा रहा था। इशिका ने दोपहर में भी आशिका को कॉल किया था, तब भी उसने रिसीव नहीं किया था और अब भी नहीं। अजीब बात है, ना अभिमन्यु कॉल रिसीव कर रहा है और ना ही आशिका। आई होप कि सब ठीक हो, इशिका परेशान स्वर में बोली। तभी रूही खुश होकर जोर से चिल्लाई, डैड आ गए। रूही के कहते ही इशिका ने एंट्रेंस की तरफ देखा तो अभिमन्यु आ रहा था, और उसको देखते ही रूही झट से अपने कुर्सी से उतरकर दौड़कर अभिमन्यु के पास जाने लगी। उसे देखते ही अभिमन्यु घुटने के बल बैठा और रूही को अपनी बाहों में भर लिया था। उसके होठों पर वही हल्की सी ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी। मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मैंने आपको बहुत मिस किया, रूही अभिमन्यु से मुस्कुराते हुए बोली और उसकी गाल पर जल्दी से किस कर लिया था। और मैंने भी आपको बहुत मिस किया, अभिमन्यु बोला और उसने रूही को अपनी गोद में उठा लिया था। वो इशिका की तरफ बढ़ने लगा। डिनर किया तुमने, अभिमन्यु ने इशिका के पास आते ही पूछा। इशिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। वो रूही के सामने कोई सीरियस बात नहीं करना चाहती थी। इशिका ने अभिमन्यु से रूही को अपनी गोद में लिया और उसकी नाक पर हल्का सा किस करके कहा, पता है डैड पूरे दिन बाहर थे और काम कर रहे थे, वो थोड़ा थक गए हैं, हम सुबह बात करें उनसे। ओके, लेकिन कल मैं पूरा दिन उनके साथ रहूंगी, रूही ने अभिमन्यु की तरफ देखा और प्रॉमिस करने के लिए अपना नन्हा सा हाथ उसके आगे बढ़ा दिया था। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, ओके कल का पूरा दिन तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का। इशिका रूही को लेकर उसके कमरे में चली गई थी। उसने रूही को सुलाया और वापस अपने कमरे में आई। तब तक अभिमन्यु चेंज कर चुका था। आखिर चल क्या रहा है, कुछ बताओगे? आशिका मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और ना ही तुम, इशिका ने कमरे के अंदर घुसते ही शिकायत लगाते हुए कहा। क्योंकि आशिका इंडिया में नहीं है, अभिमन्यु बोला और उसने इशिका को खींचकर अपने करीब कर लिया था। अभिमन्यु की आवाज़, उसकी ठहरी हुई सांसें और चेहरे के भाव उसकी थकान की गवाही दे रहे थे। सिर्फ इशिका ही थी जो ऐसे में उसकी इस थकान पर मरहम का काम करती थी। अभिमन्यु ने इशिका को अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद करके धीमी आवाज में कहा, बस कुछ मत कहो, मुझे थोड़ा रिलैक्स करने दो। इशिका धीरे धीरे उसकी पीठ को सहला रही थी। उसने नरम लहजे में कहा, कोई हर वक्त ये शिकायत लगाता रहता था कि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, और जब मैंने सब कुछ मैनेज करना सीखा तो आज वो मुझे अपने 5 मिनट तक नहीं दे पाता है। अफसोस, हमारी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ कम हुई तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जगह अभिमान और आशिका ने ले ली है, अभिमन्यु बोला और फिर इशिका से अलग हो गया था। उसने गहरी सांस लेकर इशिका को सब बताते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तृप्ति बजाज आशिका की रियल मॉम नहीं है, बल्कि वो मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया की बेटी है। तृप्ति ने आशिका के बचपन में उसे किडनैप कर लिया और उसे मरा हुआ साबित कर दिया था। वो उसे अपने साथ US ले गई और, अभिमन्यु बोल रहा था तभी इशिका ने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा,
और उसे जानबूझकर तकलीफ दी क्योंकि वो काजल सिंघानिया से नफरत करती थी, ठीक वैसे ही जैसे मालविका ने मेरे साथ किया क्योंकि वो मेरी माँ से नफरत करती थी। इशिका आशिका के दर्द को अच्छे से समझ सकती थी। हालांकि इशिका की याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई थी, लेकिन पिछले ढाई साल में क्या हुआ था इस बारे में उसे सब पता था और उसे कुछ कुछ बातें याद भी आने लगी थीं। इशिका के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर अभिमन्यु ने उसके गाल को अपने अंगूठे से प्यार से सहलाया और कहा, मालविका ने अपनी नफरत में वो तो नहीं किया जो तृप्ति ने किया है, उसने आशिका को अभिमान के ही डैड के साथ भेज दिया। वो औरत सच में बहुत घटिया है, पता नहीं अब आशिका कहाँ होगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उसे ढूंढ ही लोगे, इशिका ने जवाब दिया और अपना सिर अभिमन्यु के कंधे पर रख लिया था। अभिमन्यु को इशिका के साथ टाइम बिताते हुए ठीक से आधा घंटा भी नहीं बीता था कि उनके कमरे पर किसी की दस्तक हुई और किसी ने दरवाजा खटखटाया। इशिका ने आंखें घुमाई और तुरंत अभिमन्यु से अलग होकर कहा, क्या लगता है मिस्टर राजवंश, कभी इस जन्म में मुझे आपके साथ ठीक से टाइम बिताने का मौका मिल पाएगा? उसके बात सुनकर अभिमन्यु हल्का सा हंस दिया था। दरवाजा खोलने से पहले उसने इशिका के होठों पर हल्का सा किस किया और फिर डोर खोला तो हाउस हेल्पर ने उसे पृथ्वी के आने की बात बताई। अभिमन्यु अकेले ही नीचे जाना चाहता था, लेकिन इशिका भी उसके पीछे आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में डॉक्टर के आने के बाद काजल अपने कमरे में आराम कर रही थी। आशुतोष हमेशा की तरह अपने स्टडी रूम में थे और आशिका के मोबाइल में उसकी फोटो देख रहे थे। वो उसे बहुत मिस कर रहे थे और सिर्फ वही नहीं, अभिमान का भी यही हाल था। मैंने तुम्हारी जिंदगी का बहुत टाइम मिस किया है आशिका, और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, पर अफसोस कि फिलहाल मुझे तुम्हारे बारे में एक ही शख्स से सब पता चल सकता है, आशुतोष ने आंखें घुमाकर कहा। हालांकि अभिमान को कॉल करते वक्त उनका ईगो जरूर आगे आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अभिमान को कॉल लगा ही दिया था। लगता है आशिका के जाने के बाद अभिमान और आशुतोष के बीच की दूरियां जरूर कम हो जाएगी, और जैसा कि इशिका ने कहा, अभिमन्यु आशिका को ढूंढ ही लेगा। वैसे बहुत दिनों बाद अभिमन्यु और इशिका का कुछ सीन लिखा, कैसा लगा आपको? पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।